मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए अब हम लोग पिछले 2 दिनों से जिस विषय पर बात करते आ रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं थोड़ी सी इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं कि दरअसल फिर स्वर्ग है कहां, क्या वो है ही नहीं, अगर है तो फिर किस रूप में है, वो कहां है, उसे कैसे समझा जाना चाहिए, हमारे लोगों ने फिर इसकी कल्पना ही क्यों की, क्या ये मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाने की एक कोशिश थी या इसके पीछे कोई एक बहुत अच्छा उदात्त उद्देश्य भी था। आइए थोड़ी सी हम इन बातों को जान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको जानने के बाद शायद हम अपने अपने लिए स्वर्ग और नर्क की अवधारणाओं को लेकर के सही निष्कर्ष निकाल सकें। मित्रों देखिए, जो स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना की गई थी, अगर हम प्राचीनतम समाज में जाएं तो देखिए प्राचीनतम समाज में आज के जैसे राज्य नहीं थे, न कोई इस तरह की न्यायपालिकाएं थी, न कोई संविधान था, लेकिन समाज धीरे धीरे विकसित होता गया, समाज यानी कि लोगों का समूह। अब सवाल यह है कि जब लोगों का समूह बन गया है तो आप लोगों के समूह को बनाए कैसे रखेंगे? अगर हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से काम करने लगा, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए करने लगा, तो बट नेचुरल है कि फिर समाज का जो बंधा स्वरूप रहना चाहिए, तभी समाज होता है। समाज का मतलब यह है बंधा हुआ, लोगों का बंधा हुआ स्वरूप, तो बंधे कैसे रहेंगे? तो बंधने के लिए तो बहुत जरूरी है कि उनमें कुछ चीजें तो समान हो। ठीक है, शरीर एक जैसा है, हाथ पैर हैं सबके, नाक रंग रूप लगभग समान है, तो उसी से ही समाज नहीं बनता है। तो लोगों ने फिर कुछ नियम कानून नैतिकताएं परंपराएं जो भी कह लीजिए इस तरह की चीजें बनानी शुरू की कि भैया तुम ये कर लो, देखो सबको ये करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए। लोगों ने उन्होंने मानना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी माना, कुछ लोगों ने आधा माना, कुछ लोगों ने बदल करके माना, तो इस तरह की चीजें होने लगी, लेकिन समाज का निर्माण हो गया। लेकिन उस समय याद रखिए कि आज की तरह न तो राजसत्ता थी, न्यायपालिकाएं थी और न संविधान थे, तो फिर क्या किया जाए? तो सच पूछे तो जो धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, अगर हम तर्कशास्त्र में जाकर के देखते हैं, समाज के विकास के क्रम में जाकर के देखते हैं, तो आपको लगेगा कि धर्म बेसिकली एक कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें व्यक्ति धारण करता है। धार एति इति धर्म, ये मनुस्मृति में कहा भी गया है, यानी कि जो धारण करने योग्य है वे धर्म है। देखिए वहां धर्म की परिभाषा ईश्वर को प्राप्त करने का कोई कानून नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई नियम नहीं है, सीधी सी बात है जो धारण करने योग्य हो, हमारे शरीर को धारण करने योग्य, हमारे शरीर के लिए धारण करने योग्य हो, समाज के लिए धारण करने योग्य हो। ठीक है, आपने नियम कानून तो बना दिए, लेकिन अब आप उसका पालन कैसे कराएंगे? तो पालन कराने के लिए मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि स्वर्ग नर्क या यूं कह लीजिए पाप पुण्य, इन सब की अवधारणाएं विकसित की गई कि देखिए अगर आप इनका पालन करेंगे तो मृत्यु के बाद, देखिए अगर कह देते कि अभी ही आपको स्वर्ग मिलेगा तो लोग कहेंगे कि भैया बताइए कहां है, तो मृत्यु के बाद उससे आपको यह लाभ मिलेगा, तो स्वर्ग आप जाएंगे, और अगर आप पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। तो आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से व्यक्ति नियमों का पालन करे उसके लिए स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं विकसित की गई, और बट नेचुरल है कि व्यक्ति फिर स्वर्ग और नरक, लालच और भय, इन दोनों के वशीभूत तो होता ही है। अगर वो अच्छा करना चाहता है, कुछ ज्यादा पाना चाहता है, तो वो फिर उन नियमों का पालन करेगा, और यदि वो उन्हें तोड़ेगा तो सजा के रूप में फिर उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा नरक में जाकर। तो मित्रों ये जो व्यवस्था की गई थी उस समय इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था, बहुत उदात्त था, और वह था कि किस तरह से समाज की व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और व्यक्ति को एक नैतिकता की ओर या अच्छे आचरण की ओर, सदाचार की ओर प्रेरित किया जा सके, यानी कि गलत करने से रोका जाए और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी कि केवल बता दिया जाए कि तुम ये करो, क्योंकि बता दिया जाए ये करो तो उससे बात थोड़ी सी उतनी नहीं बनती जितनी इस बात से बनती है कि नहीं देखो तुम इसे करोगे तो तुमको इससे यह लाभ भी होगा, तुमको ये बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे। तो स्वाभाविक रूप से फिर उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, जिसे हम आजकल प्रेरणा कहते हैं, आएगा और फिर वह उन बातों का पालन करेगा। तो मित्रों, इस दृष्टि से स्वर्ग और नरक की रचना की गई, और आप देखेंगे कि सभी धर्म इसकी बात करते हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का उद्देश्य कुछ लोगों को भ्रम में डालना था, गलत तरीके से उनको वो मोल्ड करना था, सही तरीके से ही मोल्ड करना था। अब आप इसको तरीका सही मान लीजिए या गलत मान लीजिए, अब आज वर्तमान में पहुंच करके या स्वर्ग और नर्क किस रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, किस रूप में हम इन्हें समझ रहे हैं, किस रूप में हम फिर उन्हें पाने के लिए कदम उठा रहे हैं, यह हम मित्रों हमारे अपने सोचने और समझने की बात है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो इसकी कल्पना की थी, उनका उद्देश्य बहुत बहुत सबलाइम उद्देश्य था, बहुत ही उदात्त उद्देश्य था। अब सवाल यह है कि चलिए, अब हम अगर ये मान लेते हैं कि है या नहीं है, तो फिर ये है कहां, राइट? तो दोस्तों, इसका भौतिक स्वरूप तो शायद नहीं ही होगा। शायद मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं दावे के साथ क्या कह सकता हूं, दावे के साथ मैं भी कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं केवल यह कह सकता हूं कि हाँ, मेरा विश्वास यह है कि भौतिक रूप में, जैसे कि कोई स्थान होता है, उस रूप में वह नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि आप कहें कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है, तो आप कहें, मैं जाऊं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहेगा कि भैया वो न्यूयॉर्क में है, क्योंकि वो है। हाँ, वो क्यों है, कैसी है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में तो कोई मतभेद नहीं है कि भैया स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, न्यूयॉर्क में है। तो उस तरह से तो स्वर्ग के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अब वो परिकल्पनाओं की बात है, उसके बारे में लोग अपनी अपनी धारणाएं बनाएंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे, तर्क देंगे, आस्थाओं की बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि स्वर्ग का अर्थ एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा और बहुत ही सुखमय जीवन से है, और जो नरक का जो अर्थ है वह है बहुत ही दुखद जीवन, कष्टमय जीवन। यह हमें मानकर चलना चाहिए। स्वर्ग एक ऐसा जीवन जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पनातीत जीवन, मतलब जहां सारी चीजें बिल्कुल बेहतर बेहतर और बेहतर ही हैं। अब सवाल यह है मित्रों कि फिर, बट नेचुरल है कि ऐसे जीवन को हर कोई पाना चाहेगा, तो फिर आप इसे पाएंगे कैसे, यह है कहां, कैसे ये मिलेगा? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इस तरह की पंक्तियां मिलती हैं, इस तरह की पंक्तियां मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि वे चीजें हाईलाइट नहीं होती, वे चीजें बताई नहीं जाती, या यूं कह लीजिए कि बताई भी जाती हैं तो हमारी पकड़ में नहीं आती। हमारी पकड़ में इसलिए चीजें नहीं आती क्योंकि हम तो मान करके चल रहे हैं कि स्वर्ग कोई अलग से कोई लोक है, कोई जगह है, कोई स्थान है, तो वो चीज हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा बैठी हुई है कि ये जो बातें हैं, जो तत्व की बातें हैं, जो सार की बातें हैं, वो हमसे मिस हो जाती हैं। अदरवाइज बहुत से लोगों ने व्याख्याएं भी की हैं और सीधे सीधे ये बात कही भी गई है कि जो स्वर्ग है या और नरक है, ये वस्तुतः हमारे अपने अंदर ही है, अपने अंदर है। हमारे जो विचार हैं वे ही स्वर्ग और नरक की रचना करते हैं। और याद रखिए कि हमारे जो विचार जिस स्वर्ग और नरक की रचना करते हैं, वो स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारे लिए होता है, वो स्वर्ग और नरक दूसरों के लिए नहीं होता। जैसे मेरे अपने जो विचार होंगे, इसमें आप सारी चीजों को ले लीजिए, सॉरी मैं केवल विचार की बात कह रहा हूं, उसमें मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी अनुभूतियां हैं, मेरी अपनी समझदारी है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। चूंकि इन सब चीजों का जन्म विचार से होता है, इसलिए मैं यहां विचार कह रहा हूं। जैसे कल्पना करके देखिए, उदाहरण के लिए, कि अभी आप लाइफ मैनेजमेंट सुन रहे हैं, राइट? लाइफ मैनेजमेंट सुनते समय आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको बहुत मजा आ रहा है तो आप मान करके चलिए कि आप स्वर्ग में हैं। तो ये जो मजा आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? जब आप लाइफ मैनेजमेंट को सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपका सोच, आप जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए तो आप पकड़ लेंगे, कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वो विचार बहुत बेहतर है, और वो बेहतर विचार आपके अंदर एक उमंग, उल्लास, अच्छापन में आपको महसूस करा रहे हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर यह लाइफ मैनेजमेंट आपको बोर कर रहा है तो आपके लिए तो देखिए सीधा सा उपाय है कि क्यों बोर होंगे, आप बंद कर दीजिए। लेकिन चलिए फिर भी आपको लगता है यार सुनना ही चाहिए, कुछ चीज मिल जाती है, यानी कि आपका पूरी तरह से मन नहीं लग रहा है, तो आप इस आनंद इस उल्लास से वंचित हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कि एक व्यक्ति इसी से उल्लास और आनंद महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, यानी कि वह अपने विचारों के स्तर पर स्वर्ग का सुख भोग रहा है। मैं बहुत ही सामान्य से अर्थों में कह रहा हूं। और एक व्यक्ति जिसे चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही है, झुंझलाहट पैदा हो रही है, जो आलोचना करता चला जा रहा है, तो बटने चले कि उसके अनुकूल उसके दिमाग में विचार उठेंगे और उसी के तहत वह महसूस भी करेगा। यही कारण है दोस्तों कि जब हम कला से जुड़ते हैं, आप म्यूजिक से जुड़ते हैं, आप फिल्में देखते हैं, तो देखिए 2-3 घंटे आपके कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि आप उसमें डूब जाते हैं। यानी कि जब हम डूब जाएं तो समझ लें कि हम स्वर्ग में हैं, यानी कि हम बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो वो हमारे अपने अंदर ही है। तो दोस्तों चूंकि अब वक्त हो चला है तो अपनी बात आज की मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, और यदि दिन भर में मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं एक दिन इस पर और बात की जानी चाहिए तो कल हम लोग इस पर फिर बात करेंगे। अदरवाइज आपसे मैं इजाजत चाहूंगा इतना ही कह के कि स्वर्ग और नर्क जो कुछ भी है वो हमारे अपने अंदर ही है और हम ही उसके आर्किटेक्ट हैं, हम ही उसे बनाते हैं, हम ही उसे बिगाड़ते हैं। और जिस दिन हम इसे समझ लेंगे तो स्वाभाविक है कि हर आदमी स्वर्ग अपने लिए स्वर्ग की रचना करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों अभी इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।